ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी 1 से 10 मई तक प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी आएंगे। यूपीएससी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 1-1 लाख रूपये देगी। और कल मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पर्व। राज्य शासन ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले की मस्जिदों का अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया गया है। वक्फ बोर्ड के नए निर्देश का पालन मस्जिदों और मदरसों के अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। राज्य वक्फ बोर्ड ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ देश का पहला वक्फ बोर्ड है जो ऑनलाइन पेमेंट के साथ पारदर्शिता का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ऑनलाइन पेमेंट होना है, चेक के माध्यम से कर दीजिए, QR कोड से कर दीजिए, IRTGS कर दीजिए। तो पायलट प्रोजेक्ट रूप में सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, चूंकि ट्राइबल एरिया है, शुरू किए हैं। और चूंकि हमारी आमदनी लाखों में होती थी, अब करोड़ों में हो जाएंगे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 1 से 10 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे आउटरीच गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री सिंहदेव ने बताया कि अभियान के तहत मुस्लिम और अन्य समुदायों के धार्मिक नेता, डॉक्टर, कलाकार, वकील, शिक्षाविद, महिला कार्यकर्ता, मीडिया प्रमुख और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उम्मीद अधिनियम के प्रावधानों और उसके लाभों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर पालिक निगमों को आदेश जारी कर दिया है। यह राशि चयनित प्रतिभागी को महापौर सम्मान निधि के तहत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कल मंत्रालय में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शहरों में आने वाले 10 वर्षों की जरूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और शहरों के आउटर में विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों में प्राथमिकता से उद्यान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ऐप या ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने को कहा। श्री साय ने रायपुर नगर निगम की तरह अन्य नगरीय निकायों में भी कर की वसूली के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने मोर संगवारी योजना के तहत घर पहुंच दस्तावेज बनाने की व्यवस्था को केंद्र सरकार के डिजी लॉकर से लिंक करने को कहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से देश भर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ संवाद किया। श्री चौहान ने इस बात पर बल दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यापक क्षेत्र है और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% जनसंख्या कृषि से जुड़ी है। श्री चौहान ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे। राज्यपाल रमेन डेका गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दूसरे दिन आज अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जी के दर्शन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रवास के दौरान राज्यपाल ने धर्मपानी स्थित इको हिल रिजॉर्ट में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, PM श्री स्कूलों, पेंड्रा रोड स्थित गुरुकुल और लालपुर के छात्रावास के बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों से पढ़ाई लिखाई, उनकी रुचि और खेलकूद के बारे में चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने पकरिया आंगनबाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया और आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता तथा पोषण आदि की जानकारी ली। इस मौके पर श्री डेका ने आंगनबाड़ी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। राज्यपाल ने पकरिया गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभान्वित परिवारों से मुलाकात की। बीते 24 अप्रैल को बीजापुर जिले के कोरागुट्टा में हुई मुठभेड़ में मारी गई तीन महिला माओवादियों की पहचान कर ली गई है। होंगी, सिंटू और शांति नाम के इन माओवादियों पर कुल 24 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वे माओवादी संगठन की बटालियन नंबर 1 की सदस्य थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। प्रदेश में इस दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाने की परंपरा है। वहीं लोग मंदिर देवालयों में दान दक्षिणा कर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। राज्य के बाजारों में आकर्षक गुड्डे गुड़ियां बिक्री के लिए सजे हुए हैं। इन्हें लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने अक्षय तृतीया पर विवाह आयोजनों में बाल विवाह की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। महिला और बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदे ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने पर वरवधु के अभिभावक, सगे संबंधी, बाराती और विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। शासन ने सभी लोगों से इसके लिए सहयोग की अपील की है। यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिलती है तो वह निकटतम थाना प्रभारी या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या महिला हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा आपातकालीन सेवा 112 पर जानकारी दे सकते हैं। आकाशवाणी से चार धाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 से 11 बजे तक होगा, जबकि यमुनोत्री धाम का सीधा प्रसारण 11:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई को सुबह 6 बजे होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। सीधा प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यात्रा से जुड़ी रिपोर्ट भी कल से 4 मई तक हर दिन शाम 7:30 बजे से 7:45 तक प्रसारित की जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले सभी 1,22,518 श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और सुरक्षित, समृद्ध तथा सुखद यात्रा के लिए प्रार्थना की। पहली उड़ान लखनऊ से 288 और हैदराबाद से 262 श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार सुचारू और निर्बाध हज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक मोटरसाइकिल में सवार होकर कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। वापसी के दौरान पेंडारी गांव के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं।
प्रदेश में अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने तथा ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में सरगुजा संभाग से लगे बिलासपुर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ जिलों में भी अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 103 करोड़ रूपये जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के 35 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 7 चिकित्सा अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं और भोपाल में 24 से 28 अप्रैल तक आयोजित 35वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कयाकिंग और केनोइंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी सौरभ साहू, शिव कुमार और निकोलस ने 200 मीटर इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति का किराया ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी 1 से 10 मई तक प्रदेश में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी आएंगे। यूपीएससी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 1-1 लाख रूपये देगी। और कल मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पर्व। राज्य शासन ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।